Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Gaya Shabda ka artha hai pran. Jo hamare pranon ki raksha karne wala hai, wo hai Gayatri Chant. Isliye yahan ved, dev sab le liye. तो अब गए की रक्षा करना, तो देखो एक दृष्टांत आपको सुना दें कैसे रक्षा करना। आपने बिहार में तीर्थ भी है, गया नाम सुना है, है? गया, और उस गया के अंतर्गत एक गयासुर नाम का राक्षस रहता था। भगवान बुद्ध ने भी वही सत्य को प्राप्त किया, वहीं पर जाकर के उन्होंने उपासना की और उस स्थिति में पहुंचे, और वहीं पर जो है गयासुर नाम का जो है राक्षस था और उसने भी उपासना की, और उसने उपासना क्या की, भगवान विष्णु को अपना आश्रय मान करके, और उसने भी एक विग्रह विशेष को सामने रख करके उसका अर्चन पूजन आदि भी किया, और वहीं पर बैठ करके उसने जो है जप किया, जप किया, और जप किया तो आप जानते हो देवता तपस्या करने में घबरा भी जाते हैं, लेकिन असुरों की तपस्या बड़ी विकट होती, वो जिधर लगते हैं उधर बड़े हैं शक्ति से लगते, पूरा बल लगा देते हैं। इसलिए ये मत कहना कि आस्तिक ही हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे तो नास्तिक भी प्राप्त, जब नास्तिक लगता है तो पूरे मन से लगता है, ठीक है। हम लोगों का मन जो है कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता। अब जो है वो गयासुर था जो उसने जो है एकाग्र चित्त होकर के, और जब उसने जप किया, और जब जब उसने किया तो इतना जप किया कि उसके प्राण जो है वो शिथिल हो गए, और प्राण शिथिल हो गए तो प्राण शिथिल होने पर उसका मन भी शिथिलता को प्राप्त, और जब मन और प्राण दोनों ही शिथिल हो गए तो दोनों के शिथिल हो जाने पर क्या हुआ, जो उसके अंतःकरण में जब जो कर रहा था विष्णु का, उस विष्णु के, उसने विष्णु को देखा नहीं था, आप लोगों ने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा, लेकिन नाम के द्वारा उसके स्वरूप को उसने जो है अपने अंतःकरण के अनुसार चिंतन किया, और जब चिंतन किया तो जब प्राण शिथिल हो गए, मन शिथिल हो गए, तो जो आकार मन में बैठा था, जिसका चिंतन हो रहा था, वो पदार्थ ही शेष रह गए, और वो था विष्णु का। और जब विष्णु शेष रह गए तो विष्णु क्या है, तो विष्णु शब्द का अर्थ ही ये जो सर्वत्र व्यापक, तो वो तो उसके हृदय में भी विद्यमान था, लेकिन जब जब मन शिथिल हो गया, प्राण शिथिल हो गए, और जब ये शिथिल हो गए तो वो पदार्थ मात्र शेष रह गया, तो माने विष्णु ही वहां शेष रहे, और जब विष्णु शेष हो रह गए, इसी का नाम है समाधि, ये भी कह दे। तो एक समाधि जैसी स्थिति में वो पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो जहां पर परमात्मा हो जाता है तो क्या होता, उसी को शांति और समृद्धि शब्द से कहते। अब वहां पर जब उसके अंतर्गत शांति समृद्धि आई, लेकिन उसी शांति समृद्धि में असुर का मतलब ही है जो कामनाओं से युक्त है। असुर और देव में यही फर्क है कि जो कामनाओं से युक्त है। अब जब इस हुआ तो भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए, शांति आदि उसे प्रदान की, लेकिन वहीं पर भगवान विष्णु ने उससे कहा वर मांगो, ये भी कह दी। तो उसने वर क्या मांगा, उपासना तो की, जप तो किया, और जप का फल भी उसे मिला, लेकिन वहीं पर कामना से ग्रसित होने के कारण उसकी वृत्ति भौतिक भी थी, इसलिए भौतिक जब वृत्ति होती है तब हमें भय होता है कि हमारी मृत्यु न हो, है? जब आध्यात्मिक की वृत्ति होती है तो वहां मृत्यु से वह भयभीत नहीं होता, इसलिए प्रारंभ में ही कह दिया अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये संकेत कर दिया, वहां अभयता निर्भयता की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे भय था, इसलिए उसने कहा हमारी मृत्यु है न हो, हमें कोई मार न सके, इस प्रकार से जो है देवादि भी न मार सके, मानवादि न मार सके, इस प्रकार से जो है और हम जिस पर चाहें उसे अपने काबू में कर ले, हमसे कोई जीत न सके, ऐसा उसने वरदान मांग लिया। अब भगवान की ये विशेषता है, इसी यही तो है ना कि न उसके यहां साधु का वेद है न असाधु का वेद, उसके यहां कोई वेद नहीं, वावे शरण तजय नहीं था, वो तो जिस जो भी उसकी शरण में आ जाता उसको जो चाहता वही दे देते। भगवान ने कहा ठीक मिल गया। अब जब मिल गया तो भगवान ने कहा ये असुर है, कामनाओं से ग्रसित है, कब इसके अंतर्गत कामना का प्रवाह चल जाए और कब इस मार्ग से ये हट जाए और कब क्या करने लगे, इसलिए भगवान ने उससे कहा कि ठीक है हम तुमको ये वरदान तो देते हैं लेकिन तुमको एक कार्य करना पड़ेगा, तब तक हमारा वरदान काम करेगा कि जो हम बतला रहे हैं वो कार्य सदा तुम करते रहो। उसने कहा बतलाओ। भगवान ने कहा मान सरोवर से 1000 कमल पुष्प प्रतिदिन तुमको लाने हैं और उनके द्वारा प्रतिदिन मेरी अर्चा करनी, मुझे समर्पित करने हैं, और ये यदि आप करते रहोगे तब तक इस संसार में तुम्हें कोई भी किसी प्रकार की हानि पहुंचा नहीं सकेगा, तुम पर कोई देवादि भी विजय कर सकेगा नहीं, ऐसा संकेत कर दिया। उसने कहा ठीक, असुर तो होते ही शक्तिमान। अब लोक की दृष्टि समझ लो कहां मानसरोवर, अब मानसरोवर से वो प्रतिदिन 1 सहस्र जो है कमल पुष्प लाता था और कमल पुष्प ला करके और भगवान विष्णु के विग्रह के सामने जो है प्रातःकाल ही सूर्योदय से पहले ही और समर्पित करता था। ये क्रिया चलती रही, जब ये क्रिया चलती रही बड़ा शक्तिशाली और शक्ति उसमें आ गई, जब और शक्तिशाली हो गया तब उसने सारे ऋषियों को ब्राह्मणों को देवताओं को सबको अपने काबू में कर लिया और मन चाहे ढंग से जो है उनको चलाने लगा। अब सारे देव सारे ऋषि ब्राह्मण आदि सज्जन पुरुष जो भी थे सभी अब तो घबरा गए, अब क्या करना चाहिए, सब परेशान हो गए और उससे विजय कोई प्राप्त कर नहीं पाया, इतना सबल हो गया, ऐसा बल उसको प्राप्त हो गया, उस बल के सामने किसी का बल काम नहीं आया। तब ये सारे दुखी हुए और दुखी हुए तो क्रम से ब्रह्मा आदि को लेकर के भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास पहुंच करके जाके प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि भई वरदान तो हमारा दिया हुआ है और तद अनुकूल वह आचरण कर रहा है, इसलिए भई जब तक उसके पास ये बल रहेगा तब तक तुम लोग बच सकोगे नहीं। तो क्या किया जाए, कहा प्रतीक्षा करो, क्योंकि असुर है, असुर होने के कारण उसके अंतर्गत कामना की प्रधानता है, इसलिए कभी न कभी उसके हृदय में कामना का उदय होगा और जब कामना का उदय होगा तभी हम भी उसे मार सकते, उससे पहले हम भी मारने में समर्थ नहीं। ऐसा जब भगवान ने कहा तो देवताओं ने कहा क्या करें, कि तो तुम जाओ। अब सब देवता कोई कहीं छिप गया जाके, ऋषि ब्राह्मण भी कंदराओं गुफाओं में जाके छिप गए, अब क्या कर सकते, उसके सामने तो जा नहीं सकते, सब घबरा गए, सब इधर उधर छिप गए जाके। अब कुछ काल बीतने के पश्चात कोई एक महिला आई और उससे कहा मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहना चाहती हूं। उसने कहा ठीक, रख लिया, उसके पूजा के सामान को ठीक ठाक करने लगी, उसकी सेवा करने लगी, सारी बातें होने, लेकिन धीरे धीरे अब हुआ क्या, कामनाओं से ग्रसित उत्थाई, धीरे धीरे अब जो है जो नियम था कि सूर्योदय से पहले यह कार्य होना चाहिए, अब वो जो है जब कामनाओं से ग्रसित हो जाता है तब उठने बैठने और आचरण की क्रियाएं भी बिगड़, कब उठना है, कब जो है सोना है, कब जो है क्या करना है, ये सारी प्रक्रिया ही परिवर्तित हो, उसकी भी जो है अब वह सोता रहा, देरी हो गई और देरी होने के सोने के कारण जो है मानसरोवर से वो ला पाया और उसकी वो प्रक्रिया भंग हो गई, भंग हो गई, भगवान को अवसर मिल गया, भगवान ने गदा उठाया और उसका वहीं पर मर्दन कर दिया। और उसके सिर पर खड़े हो गए, सबको अभय कर। आज भी आप देखते हो उसी के ऊपर गदा लिए भगवान विष्णु भगवान गया में खड़े हुए हैं। तो ये सब जो है, अब इसका तात्पर्य क्या है? तो ये तो एक माने रूपक है और ये चाहे आख्यान समझ लो पौराणिक, लेकिन इसका तात्पर्य क्या? इसका भी तात्पर्य ये है, आप श्रुतियों में पढ़ते हो हृदय पुंडरीकम। हृदय क्या है? उसे क्या बतलाया? का पुंडरीक। और संकेत फिर करते सहस्रार, योग शास्त्र में बोलते हो सहस्र चक्र, ये सब बोलते हो। तो अब जो हृदय क्या है? तो कमल है, और हृदय ही कमल है, और वही क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर भी क्या है? कहा वही है। तो उस मानसरोवर में होने वाले कमल, ये समझ लो, और उस कमल को क्या करना है? और कमल का स्वभाव क्या? कमल कोमल होता है, नाना प्रकार के दलों से होता है, मृदुता से युक्त होता है ना, और सबको जो है सुंदर लगने वाला होता है। ये सब चीजें होती है कमल के अंदर। अब ये भाव कहां पर हो? तो मान सरोवर में। और मान सरोवर क्या? तो अंतःकरणी, मन का ये सरोवर है। और इस मान सरोवर के अंतर्गत हजारों उसके दल हैं। यहां पर हजारों दल क्या हैं? तो एक वृत्ति नहीं है, इस मन के अंतर्गत ही हजारों वृत्तियां उदित होती, वो ही उसके दल हैं। अब ऐसे इस मन के अंतर्गत होने वाला जो वो कमल है, उसी को उन वृत्तियात्मक जो है उसके दल हैं, और इसी वही अंतःकरण में होने वाला है। और हृदय को भी कमल शब्द से ही कहा गया, तो उसका भी बतलाया गया कि ऊपर उसका डंठल है, नीचे की तरफ उसके दल हैं, ऐसा संकेत करते हैं शास्त्रों में। तो अब जो है ऐसे उस हृदय में होने वाली माने कमल के पुष्पों को चढ़ाने का मतलब मृदुता से है, कोमलता से, और जो है सुंदरता से युक्त जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को इस मन में से निकाल करके और प्रातःकाल है क्या करना? सूर्योदय से पहले ही अर्थात मुझे अर्पण करना। अर्थात सूर्योदय से पहले माने जहां अंधकार और प्रकाश की जहां संधि है, अर्थात ज्ञान अज्ञान की जहां पर संधि है, उस अवस्था में जब हम इसको करते हैं तो वहां पर क्या होता है? तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होते हैं तो सारा बल हमें, सारी सामर्थ्य हमें प्रदान कर दे। लेकिन उसमें जब विघ्न हो जाता है तो वहीं पर फिर क्या होता है? तो कहने लगे फिर मृत्यु। तो इसलिए ये संकेत किया कि ये अंतःकरण के अंतर्गत होने वाली वृत्तियों को काबू करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, परमात्मा में लगाने के लिए ये समस्त जप पूजन उपासना आदियों का विधान किया। लेकिन इसका अंतःकरण जप और पूजन आदि करते हुए पवित्र हो गया है, ऐसे उस पवित्र अंतःकरण वाले अधिकारी के लिए यहां पर इस विहारतियों की है जो उपासना है, ओम की जो उपासना है, उसका विधान है। और ये ओम की उपासना क्या कराती है? तब उसके लिए संकेत कर दिया, उसकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, ओम का उपासक कैसी वृत्ति बनाए, इसके लिए संकेत कर दिया। आप भले ही बोल दो सर्वम खल इदम ब्रह्म, जो हम ये सूत्र कहते हैं वही तो यहां कहते, देव भी उसी ओम की व्यार्थियों से, लोक भी उसी से, और अग्नि भी उसी से, प्राण भी उसी से, और जो है वेद भी उसी। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? तो वही सब हो गया, उससे भिन्न तो सबका आश्रय वो हो गया। जब सबका आश्रय हो गया तो सर्वरूप वही हो गया। अब सर्वरूप वही हो गया तो उसे कह दो सर्वम खल इदम ब्रह्म, तो इसमें क्या हो? तो सब कुछ वही है, या सियाराम वह सब जग जानी है ना। और जब ये आ जाएगा तब जीवन में उपासना इसकी बनती है, यहां से ये उपासना चालू होती है। और ये उपासना जब होगी तो इसी को उपासना कहो, भक्ति कहो, तो भक्ति यहां से शुरू होती है। तो भक्ति क्या कराती है? तो इसलिए पहले भक्ति के लिए क्या कहा भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में अर्जुन को संकेत क्या किया? पहले तो उन्होंने ये किया, भक्त्या माम अभिजानाति, सामान्य रूप से चर्चा की, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा वो मेरे को जानता है। कैसे जानता है? यावन यश्चास्मि तत्वतः, मैं जैसा हूं मेरे यथारूप को वह जानने में समर्थ होता है और फिर धीरे धीरे उस यथारूप में पहले जानता फिर जानते हुए तत्वतः मेरे को तत्वतः यथार्थतः जब वह जान लेता है विसते तदनंतरम तब वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, मेरे में प्रवेश कर जाता, अर्थात मेरे से उसकी एकता हो जाती है। और जब एकता हो जाती है तो पूर्ण शांति और समृद्धि को प्राप्त कर। लेकिन ये संकेत वहां किया तो वहां भी एक क्रम बतलाया और संकेत किया 14वें अध्याय में शायद गीता में भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। क्या कहा? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। वहां तो सामान्य व्यक्ति का प्रयोग करके तब क्रम बदला दिया, यहां पर कहे कि कैसी भक्ति से तो विशेषण दे दिया भक्ति, लेकिन कैसी भक्ति किस भक्ति से मुझे प्राप्त करता है तो कहने लगे अनन्यया। यदि अन्य वृत्ति रही तब जहां पर अन्य शेष न रह जाए अनन्य भक्ति के द्वारा जो है फिर कहा ज्ञातुम है तत्व आदि से प्रयोग कर दिया प्रवेश तुम है ये कहा तब तो कह तब मेरे में वह मेरे को जान लेता है और फिर मेरे में प्रवेश कर जाता है तब ये सामर्थ्य उसे प्राप्त होती। तो उपासनाओं का एक क्रम है, ओंकार की उपासना का भी ये जो है अंतिम रूप है, ये उत्तम अधिकारी के लिए है ये कहा जा सकता है। लेकिन जबकि जहां तक बात है तो ऐसा नहीं कि ओंकार के जप को कोई नहीं कर सकता, ओंकार का जप तो प्रत्येक मंत्र के आदि में लगा और शास्त्र इसका निर्देश करता आदे अंतौच, ओंकार को आदि में लगाना अंत में लगाना और मध्य में भी लगाना, और ये दोनों कैसे हैं तो मंगलवाची कहा गया। केवल ये उसे प्राप्त कराने वाला ही नहीं ओंकार, इसलिए जो आप बोलते हो है ना कि कंठम वित्वा विनर्यातौ तस्मान मांगलिकाभव, ये ओंकार क्या है? ओंकाराश्चात शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठम वित्वा विनर्यातौ तस्मान मांगलिका उभौ। अत और ओंकार ये शब्द क्या है? उस ब्रह्मा के जो आदि सृष्टा है उस आदि सृष्टा के मुख से फोड़ करके निकले, कंठ को फोड़ करके निकले, और इसलिए ये दोनों कैसे हैं? कहा मंगल की बाजी। और मंगल शब्द का अर्थ क्या? मगम लुनाती थी मंगलम, जो हमारे मगों को पापों को नष्ट करे, जो हमारे अवरोधों को समाप्त करे, उसका नाम मंगल है। तो ओंकार का उच्चारण करने से हमारे पापों की निवृत्ति होती है और आगे हम उपासना के अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसा संकेत किया, और केवल श्रुति नहीं कहा हो, श्रुति तो प्रमाण है, इसको तो जो है आपने सुना है, कबीर ने जो पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन जिन्होंने अनुभव किया, और विज्ञान का भी मतलब होता है जो हमारे अनुभव में ज्ञान आ जाए तो अनुभवात्मक ज्ञान का नाम ही विज्ञान। तो वो अनुभव जिनके जीवन में हो तो वहां पर कबीरदास ने क्या कहा? पोथी शास्त्र भी कहता है, जो है बहुत पढ़ने से बहुत बोलने से बहुत सुनने से और बहुत पूजा करने से वो प्राप्त नहीं होता, ये सब कहा है। और कबीरदास ने क्या कहा? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अब आप देख लो किसी भी नाम के अंतर्गत ढाई अक्षर हैं, वो ओम के अंतर्गत ही अकार उकार ये स्वर होने के कारण एक एक मात्रिक हैं, और मकार जो है व्यंजन होने के कारण उसकी व्यंजन की अर्ध मात्रा गिनी जाती है ना। तो अब ये कितनी हो गई? ढाई मात्रा। अन्य किसी में लो तो ढाई नहीं, लेकिन ध्यान रखना इसी को जो है कहा इसको जो पढ़ लेता है अर्थात इसका जो अनुभव कर लेता है, इसका जो अध्ययन कर लेता है, इसे जो जान लेता है, इसे जो अपने जीवन में धारण कर लेता है तो कहने लगे उसकी गति हो जाती। और वही यहां संकेत करते ओम इत्य का खरम ब्रह्म तो इत्यादि करके सब संकेत किया और उसको ब्रह्म कहकर बतला भी रहे, उपासना उसको विश्लेषण करके समझा रहे। तो अब जो यहां कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओम श्रेष्ठ है लेकिन अन्य हम ग्रहण न करें, ऐसा भी नहीं। यहां पर बतलाया सब संकेत दिया, आप किसी भी नाम तो केवल एक नामी को बतलाने के लिए संकेत करने के लिए है और संकेत ये जो है वही हमें लक्ष्य करा देता है। इसलिए हमारे दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी कहा शब्द शक्तिर अचिंत्यत्वा, तो शब्द शक्ति कैसी है? अचिंत्य शक्ति। वो शब्द जो है, शब्द मात्र है, नाम मात्र है, लेकिन वो शब्द जो है हमें क्या करता है? कहा उस लक्ष्य को लक्षित करा देने में क्षम। और यहां तक गन्ना जाट आदि की कथाएं सुनते हो है? कौन से पढ़े लिखे थे, कौन से शास्त्र का अध्ययन किया था, कौन सा उसने उपासना की थी, लेकिन उसके हृदय में अंतःकरण की पवित्रता, मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता से जब उसने स्मरण किया, और किसको स्मरण किया, तो वहां पर ओम को स्मरण नहीं कर पाया, लेकिन उसने तो अवतार रूप से ही ग्रहण किया। तो किसी भी नाम को यदि हम जो है, लेकिन उस नाम के अंतर्गत हमारी मन की दशा क्या है, हमारी मन की वृत्ति क्या, यदि हमने अपना उसे इस्तेमाल लिया है तो उसे सर्वस्व मानते हुए, उसी में सर्वरूपता स्वीकार करते हुए, यदि हम उसका चिंतन करते उच्चारण करते हैं तो वही नाम हमारे लिए लाभकारी हो। और वो क्या करेगा? वो हमारी भूमि को बनाएगा, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा, और अंतःकरण को शुद्ध करेगा तब जो उसकी सर्वरूपता है वो हमारी समझ में आए। जब उसके लिए शास्त्र कहता, श्रुति एक तरफ कहती है वो निर्गुण है, वो निरीय है, वो निष्कल है, ये सारी चर्चाएं करती और अक्रिय है, लेकिन दूसरी तरफ शास्त्र ही बतलाते वो क्या हो जाता। तो पुरुष सूक्त वेद का कहता है सहस्र शीर्ष, उसके कोई अवयव नहीं है, निर्वय भी है, ये सब चर्चा की, और उसके लिए शास्त्र क्या कहता है? सहस्र शीर्ष, सहस्राक्ष, ये शब्द क्या, उसके हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों सिर हैं, और ये सब कहते हुए फिर क्या कहा कि सबका अतिक्रमण करते हुए हैं तिष्ठति, कहां दशांश में, ये भी संकेत कर दिया। तो जब सर्व उतने इतना व्यापक है, उसका विराट का वर्णन करते हुए सब संकेत किया, और इतना ही नहीं कह दिया नाभ्या आसी दंत रिक्ख गुं शीष्णो जौहु समवर्तत पद्भ्याम भूमिर दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्प, क्या कह दिया, हजारों हाथ भी कह दिया, फिर इधर क्या कह रहे हैं, कहने लगे ये आकाश जो है वो उसकी नाभि है, पृथ्वी उसके पैर है, देव उसका है सिर है, और दिशाएं उसके कान है, बताओ इतनी व्यापकता उसकी बदल। तो ये जो सब इस प्रकार से वर्णन क्यों है, वहां तक पहुंचाने के लिए, कहां तक पहुंचाने के लिए, तब आगे उसी पुरुषोक्त में कहा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते, ये फल बतलाया जाता है। पहले उस विराट स्वरूप की चर्चा की, और विराट स्वरूप की चर्चा के उपासना के लिए है, और जब उपासक इस भाव से उपासना करता है तो सर्वरूपता की उपासना करते हुए फिर कहां पहुंचता है, जब उसको जान लेता, और जान लेता है तो कहा वही तमस्य पर है, और ऐसे उसको जान करके ही वो क्या होता है, मृत्यु का अतिक्रमण, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं, ऐसा संकेत या फलित अर्थ बतलाया। तो इसी प्रकार से वही सारा रहस्य यहां संकेत कर रहे हैं, सर्वरूपता ओम को व्याहृतियों के द्वारा दिखलाते हुए, और अंत में महानाम की व्याहृति से उसमें जो है सर्व का समाधान भी बतलाते हैं, सर्व का त्याग भी बतलाते हैं। वो मह मात्र है, प्रकाश मात्र है, ज्ञान मात्र है, और ऐसा कहकर के जब ऐसी साधक साधना कर लेता है तो वो भी क्या है, शांति और समृद्धि को प्राप्त, ये इसका तात्पर्य है। अब आगे चर्चा जो है कल ही करेंगे। ओ